بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جن انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مشہور شخصیت حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. ان کا زمانہ بعثت جو ہے 860 قبل مسیح سے کے اور 784 کے درمیان بتایا جاتا ہے. یہ عراق کے مشہور شہر موصل میں کے قریب نینوا میں مبعوث کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے سے روکنے کی کوشش کی اور ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن جب اس قوم کے لوگوں نے ان پر توجہ نہیں دی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس بات کی خبر دے کر کے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، بستی چھوڑ کر کے چلے گئے. اللہ رب العالمین کا حکم بستی چھوڑنے کا نہیں تھا، اس چیز کی وجہ سے یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جیسا کہ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس بستی سے نکل کر کے ہجرت کرنا چاہا. دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی وہاں تیار کھڑی تھی، اس میں سوار ہو گئے اور اس کے بعد کچھ دور چلنے کے بعد وہ کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگی. اور وہاں کا طریقہ یہ تھا یا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آقا کو ناراض کر کے یا اس کی اجازت کے بغیر اگر کشتی میں سوار ہو جاتا تھا تو وہ کشتی غرقاب ہونے کے قریب ہوتی تھی یا غرق ہو جاتی تھی. اس کے نتیجے میں جب کشتی نے ہچکولے کھانے شروع کیے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس میں اپنے مالک کو ناراض کر کے یا اس کے اجازت کے بغیر یہاں آیا ہو تو وہ اپنا نام بتا دے. جب کسی کا نام نہیں آیا تو لوگوں نے قرآن دازی کی اور اس میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا. لوگ یہ کہتے رہے یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی، آخر یہ کیسے اس طرح کے ہو سکتے ہیں. آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا اور ضروری جو کپڑوں کو چھوڑ کر کے ایسے کپڑے جو تھے انہیں اتار کے اور دریا میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا. وہاں اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی بھیجی، جو مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی اور اس کے بعد فوراً اس مچھلی نے انہیں نگل لیا. نگلنے کے بعد وہ کافی دور تک چلی گئی اور انہیں لے کے پھرتی رہی. اس کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، بعض دوسرے صحابہ نے بھی اس سلسلے میں باتیں کہی ہیں. مختلف دن بتائے گئے ہیں کہ اتنے دن، الغرض یہ ہے کہ بہرحال ایک ہفتے سے لے کے یعنی کئی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، تو کا ایک عرصہ تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں جو ہے دریا کے کنارے لا کے اگل دیا. وہ کیفیت ان کی یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے بال سب جسم سے جھڑ گئے تھے، چمڑا بھی متاثر ہو گیا تھا، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی جگہ اس مچھلی نے اگل دیا اور اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل خاص سے یا اپنے اقتدار خاص سے ایک ایسا درخت اگایا جو بیل کی ٹائپ کا وہ درخت تھا اور اس میں جو ہے اس طرح سے ان کی مچھلی کے پیٹ میں جو مشکل پیدا ہوئی تھی آہستہ آہستہ اس سے دور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کیفیت ہوئی کہ پھر وہ اس لائق ہو گئے کہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں. ادھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو انتباہ کیا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. قوم کا حال یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ اور غلط بات نہیں کہی ہے، ان کی سچائی پر انہیں یقین تھا، چنانچہ ان کے بستی سے چھوڑ کے نکل جانے کے بعد ان کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں इन्होंने जो बात कही है वो बहरहाल सच्ची है। हमें इसके लिए आमादा और तैयार होना चाहिए और अल्लाह से रुजू करना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। चुनांचे पूरी कौम ने इत्तेफाक करके अपने बच्चों को और जानवरों को ले करके मैदान में पूरी कौम निकल गई और उन्होंने अपने रोए गिड़गिड़ाए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनके ईमान को भी कबूल फरमा दिया। चुनांचे सुन्नत ये रही है अल्लाह ताला की, कभी भी कोई कौम जिस पर अज़ाब का फ़ैसला हो चुका हो अज़ाब टलता नहीं था, लेकिन इस कौम के बारे में चूँकि ये हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न के बग़ैर बस्ती छोड़ करके चले गए, हिजरत कर गए थे, इसलिए कि हिजरत का हुक्म भी अल्लाह की तरफ से आता है जब ही नबी बस्ती को छोड़ता है, तो इसलिए जब उन्होंने बस्ती छोड़ दिया था और वो मौका हुज्जत पूरी तमाम नहीं हुई थी जिसकी वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा इस्तग़फ़ार की और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया और फिर उन्हें दुनिया में मज़ीद दुनिया से फ़ायदा उठाने का और जीने का मौका इनायत फरमाया। इस तरह से इनके अंदर भी ये तौबा इस्तग़फ़ार के नतीजे में जो सुधार पैदा हुआ और जो ये भलाई की तरफ मुड़े और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी जब सेहत याब हुए और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इत्माम हुज्जत के लिए अपनी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम की तरफ आप जाएं। उसके बाद वो जो है अपनी कौम की तरफ आए और उन्होंने फिर उनकी जब दावत दी तो जाहिर है पूरी उम्मत का रुख, पूरी कौम का रुख बदल चुका था और सारे लोगों ने दावत को कबूल किया और उनके अंदर भलाइयाँ पनपने लगीं और अच्छाइयों की तरफ वो आ गए और इस तरह से पूरे कौम की काया पलट गई, सारे लोग अच्छे अच्छाइयों की तरफ बढ़े, यहाँ तक के हाकिम और रियाया दोनों जो है अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू किया और उस मुल्क में इस तरह के हालात तब्दील हुए कि फिर उन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जीना शुरू कर दिया और उनके हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए और फिर इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस कौम को हिदायत की राह पे लगा दिया। तो अगर गौर किया जाए तो कुरान पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से को चार सूरतों में बयान फरमाया है, चार जगहों पे इसका ज़िक्र है। एक जगह तो इनकी कौम के हवाले से ज़िक्र है और दूसरी जगह तीन जगह हैं जो हैं जिसमें बराह रास्त उनके ज़िक्र हैं। इन बुनियादों में अगर देखा जाए तो ये भी हम जानते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से कुरान पाक में किसी न किसी मकसद के तहत बयान किए गए हैं। इस पर अगर गौर किया जाता है तो ये पता चलता है कि इनका किस्सा जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो उस बताने में दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी बंदे को पलटना अल्लाह की तरफ चाहिए, अपने मालिक की तरफ रुजू करना चाहिए, वही बिगड़ी बना सकता है, वही हालात को बदल भी सकता है और वही जो है अपने कुदरत कामिला से सूरत हाल तब्दील कर सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जिस काम पे अल्लाह ने किसी को मुतय्यन फरमा दिया है उस पर उसे जमे रहना चाहिए यहाँ तक कि खुद उसका हुक्म आ जाए कि उसे छोड़ वहाँ से हिजरत कर जाए। तो इसलिए ये एक दूसरा पहलू जो था जहाँ कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया सूरह कलम में कि फसबिर वला तकुन कसाहिबिल हूद, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि अपने मौक़िफ़ पे आप जमे रहिए, बिलाशुबा आपके कौम का रवैया जो है वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है और हक़ के ठुकराने का नतीजा भी सही नहीं होगा, लेकिन इन सब के बावजूद जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता आप उस पर जमे रहिए, इस तरीके से कायम रहिए। फिर इसी तरीके से आप देखें कि एक लंबी मुद्दत तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई और जिसका कि कुरान मजीद में भी और दीगर सहीफ़ों में जिसका ज़िक्र यह आया है कि तकरीबन वो 100,000 से ज़्यादा साल तक वहाँ बस्ती में तबलीग का काम करते रहे। एक दूसरा पहलू जो है किस्सों के बयान करने का वो ये है कि अल्लाह से मांगने का एक तरीक़ा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दावत दुआ में वो फरमाई। वो ये है कि जो जुमले कहे उन्होंने उसमें कहीं भी अपना मुद्दा जाहिर नहीं किया, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले ये चीज़ छोड़ दी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मुश्किल को आसान फरमा दिया और मछली के पेट में उसे जो है अल्लाह ताला ने उन्हें वो किया। एक बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में दुआ की, उन्हें ये एहसास हुआ कि अभी हम जिंदा हैं या मर चुके हैं, तो जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जिंदा हैं तो वो फौरन सद्दे में गिर गए और इस हालत में उन्होंने ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ जो है उस वक्त की, इसलिए एक अहम बात यह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही वो शख्स हैं जिन्होंने मछली के पेट में सजदा किया और ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।